एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो पुणे के स्टूडियो से
आपका हार्दिक स्वागत है।
यह हमारी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सेवा है।
हमारे आज के कार्यक्रम में हम आपके लिए एक प्रेरणादायक संदेश और प्रशंसा के गीत ले आए हैं।
आपको आध्यात्मिक रूप से मजबूत करने के लिए आप परमेश्वर का वचन सुनेंगे।
आप एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो सुन रहे हैं आशा की वाणी।
अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं 1-800-833-2231 पर संपर्क करें या bible@awr.org पर ईमेल करें।
इस डाक पते पर हमें लिखने के लिए आपका स्वागत है। एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर, पोस्ट बॉक्स 1446, मार्केट यार्ड पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल कर सकते हैं hindirsamc@sudavent.org। एक बार फिर ईमेल आईडी hindirsamc@sudavent.org पर।
आप इस नंबर पर आपकी बाइबल अध्ययन में रुचि और प्रार्थना अनुरोध के साथ हमसे संपर्क कर सकते हैं। 9195-7285-9272।
आप हमारे सभी कार्यक्रमों को सुनने के लिए हमारी वेबसाइट awr.org पर भी लॉगिन कर सकते हैं। मैं दोहराता हूँ awr.org या awr360 मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।
एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो AWR पुणे स्टूडियो से।
हमारे साथ हैं श्रीमान रॉबिन्सन आर कुजूर परमेश्वर का वचन प्रस्तुत करने के लिए।
परमेश्वर का वचन सुनने से पहले आपके लिए एक मधुर गीत।
बनकर चला था वो संभव को तू करता है संभव अग्नि और बादल बनकर चला था चट्टान बनकर मुझे बचाता गांव
समय है परमेश्वर का वचन सुनने का।
नमस्कार मेरे प्रिय श्रोताओं, मैं भाई रॉबिन्सन कुजूर परमेश्वर का सेवक परमेश्वर का वचन लेकर आपके पास आता हूं। आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें उसका वचन सुनने से पहले। हे हमारे सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर पिता, हम तेरे चरणों के पास आते हैं, हम सबों को तो आशीष दे, ग्रहण कर और तेरा वचन से आशीषित कर। पिता हमें तेरे रास्ता में चला और हमें तेरे जैसा बना और तेरे राज के लिए तैयार कर। मेरे संग हो पिता, तेरा पवित्र आत्मा से अगुवाई कर जब मैं तेरे वचनों को बतलाता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन दया से ग्रहण कर, आमीन। क्या मैं आज परमेश्वर का कलीसिया पा सकता हूँ? आज हम इस पर अध्ययन करेंगे। परमेश्वर ने अक्सर विभिन्न पीढ़ियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए विशेष संदेश दिए हैं। आदम और हवा की दुनिया को जब पाप ने बर्बाद कर दिया तब उनकी मदद करने के लिए एक संदेश दिया। जल प्रलय से पहले दुनिया को एक संदेश दिया। इज़राइल के लिए एक संदेश जब असीरिया या बेबलोन ने डराया था। यीशु अपनी पीढ़ी के लिए एक विशेष संदेश लेकर आए और परमेश्वर ने हमारे दिन के लिए एक विशेष संदेश दिया है। प्रकाशित वाक्य के अध्याय 12 और 14 आज हमारे लिए परमेश्वर के विशेष संदेश को संक्षेपित करते हैं। हम उस संदेश पर एक नज़र डालेंगे। यीशु के जीवन और शिक्षाओं ने उस प्रेरितक चर्च में विश्वास की एकता और घनिष्ठ सहभागिता स्थापित की जिसे उन्होंने स्थापित किया था। प्रचारकों ने जी उठे मसीह के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए। पौलुस ने उस घनिष्ठ संबंध को वैवाहिक रिश्ते के जैसा बताया। आइए हम पढ़ते हैं 2 कुरिन्थियों 11:2। इसमें लिखा है, मैंने तुम्हें एक पति का वचन दिया है यीशु को, इसलिए मैं तुम्हें पवित्र कुंवारी के रूप में उनके समक्ष पेश कर सकूं। पौलुस के अनुसार ईसाई कलीसिया एक शुद्ध महिला है, मसीह की दुल्हन, मसीह की प्रिय कलीसिया का एक उपयुक्त प्रतीक है। पुराने नियम में उसी रूपक का उपयोग इज़राइल परमेश्वर के चुने हुए लोगों का वर्णन करने के लिए किया जाता था। परमेश्वर ने इज़राइल से कहा, तुमने मुझसे एक दुल्हन के रूप में प्रेम किया, यिर्मयाह 2:2। मैं तुम्हारा पति हूँ, यिर्मयाह 3:14। प्रकाशित वाक्य की किताब भी एक महिला के रूप में कलीसिया की बात करती है। प्रकाशित वाक्य 12:1 में लिखा है, स्वर्ग में एक महान और अद्भुत चिन्ह दिखाई दिया। एक महिला सूर्य को ओढ़े हुए थी, उसके पैरों के तले चांद और उसके सिर पर 12 सितारों का मुकुट था। पहला, महिला सूर्य को ओढ़े हुए है। यह मसीह की महिमामय उपस्थिति को ओढ़े जाने के कारण सूरज की तरह चमकती हुई एक कलीसिया को इंगित करता है। दूसरा, महिला के पैरों के तले चांद है। चांद पुराने नियम में परमेश्वर के लोगों के बलिदान और समारोहों में मसीह सुसमाचार के परिलक्षित प्रकाश को निरूपित करता है। तीसरा, महिला के सिर पर 12 सितारों का मुकुट है। सितारे 12 प्रचारकों को निरूपित करते हैं, महान पुरुष जिनकी यीशु के बारे में गवाही इस महान दिन में शानदार ढंग से चमकती है। शैतान की हार का नाटक। महिला का प्रवेश एक महान नाटक के लिए मंच तैयार करता है। हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 12:2-5। वह गर्भवती थी और दर्द से चिल्लाई क्योंकि वह जन्म देने वाली थी। फिर स्वर्ग में एक और चिन्ह दिखाई दिया, 7 सिरों 10 सिंगों और 7 राजमुकुटों के साथ एक विशाल लाल अजगर। उसकी पूंछ ने 3/3 आकाश के सितारों को खींचकर बाहर निकाल लिया और उन्हें धरती पर फेंक दिया। अजगर उस महिला के सामने खड़ा था जो बच्चे को जन्म देने वाली थी, ताकि वह पैदा होते ही उसके बच्चे को खा सके। उसने एक बेटे को जन्म दिया, एक नर बच्चा जो लोहे के राजदंड के साथ सभी राष्ट्रों पर शासन करने वाला था। किंतु उस बच्चे को उठाकर परमेश्वर और उसके सिंहासन के सामने ले जाया गया। प्रकाशित वाक्य 12:2-5। इस नाटक में 3 प्रमुख किरदार भाग लेते हैं। पहला, महिला जिसे पहले से ही परमेश्वर के चर्च के रूप में पहचाना जाता है। दूसरा, इस महिला से पैदा हुआ नर बच्चा परमेश्वर और उनके सिंहासन के लिए छीन लिया गया है और किसी दिन सभी राष्ट्रों पर शासन करेगा। यीशु इस दुनिया में पैदा हुए एकमात्र बच्चे हैं जिन्हें परमेश्वर के सिंहासन पर ले जाया गया था और किसी दिन सभी राष्ट्रों पर शासन करेंगे। तीसरा, अजगर जो शैतान का प्रतिनिधित्व करता है। प्रकाशित वाक्य 12:7-9 में हम पढ़ेंगे, और स्वर्ग में युद्ध हुआ। माइकल और उसके दूत अजगर के खिलाफ लड़े और अजगर और उसके दूत उनसे लड़े, लेकिन वह पर्याप्त मजबूत नहीं था और उसने स्वर्ग में अपनी जगह खो दी। महान अजगर को फेंक दिया गया था। वह प्राचीन सांप, राक्षस या शैतान जो पूरी दुनिया को गुमराह करता है, उसे धरती पर उसके दूतों के साथ फेंक दिया गया। एक बार प्रतीकों को समझने के बाद हमारे लिए तस्वीर स्पष्ट हो जाती है। जब शैतान और उसके दूतों ने स्वर्ग में अपना स्थान खो दिया तो वे धरती पर फेंक दिए गए। जब यीशु इस दुनिया में पैदा हुए थे, शैतान ने यीशु के जन्म के समय यीशु को मारने की कोशिश की। जैसे ही वह पैदा हुए थे, वह असफल रहा और यीशु को परमेश्वर के सिंहासन के लिए छीन लिया गया था। तब शैतान ने मसीह द्वारा स्थापित मसीह चर्च को खत्म करने की तैयारी की। प्रचारक यूहन्ना, जिसने प्रकाशित वाक्य लिखा था, उसने इस धरती पर मसीह और शैतान के बीच इस महान संघर्ष की झलक देखी। जैसे जैसे मसीह का सूली पर संघर्ष चरम पर पहुंचता है, यूहन्ना स्वर्ग से चिल्लाने की आवाज सुनता है। यह हम पाते हैं प्रकाशित वाक्य 12:10 में। अब हम उद्धार, शक्ति और हमारे परमेश्वर के राज्य और मसीह के अधिकार में आ गए हैं। हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला, जो दिन रात हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है। हम तुलना कर सकते हैं यूहन्ना 12:31 से और लूका 10:18 से। यीशु ने सूली पर शैतान पर निर्णायक विजय प्राप्त की। फिर उन्होंने उद्धार की योजना की निश्चितता की पुष्टि की और शैतान की चालाकी का विरोध करने के लिए शक्ति प्रदान की। परमेश्वर का राज्य सुरक्षित बना दिया गया था और उद्धारक का अधिकार हमारे महायाजक और राजा होने की पुष्टि हुई थी। अब उद्धार आ गया है घोषित करता है कि इतिहास का राजाभिषेक हो गया है। दुनिया के उद्धारक मसीह का जन्म हो चुका है। 5, शैतान के भयंकर प्रलोभनों के बावजूद यीशु ने पापहीन जीवन जिया और पाप और मृत्यु 10 पर विजेता बनकर उभरे। शैतान हमेशा के लिए पराजित किया गया है। 7-9, सूली को इसकी पूरी शक्ति में महिमामान्वित किया गया है। घोषणा, अब उद्धार आया है न केवल यूहन्ना के लिए बल्कि पूरे ब्राह्मण के हितों के लिए। इसलिए हे स्वर्ग और उनमें रहने वालों, आनंदित हो, परंतु धरती और समुद्र पर दुख है, क्योंकि शैतान तुम्हारे पास चला गया है। वह क्रोध से भरा है क्योंकि वह जानता है कि उसका समय कम है। प्रकाशित वाक्य 12:12। सारे स्वर्ग ने यीशु की जीत मनाई। मसीह ने ऐसे किसी भी दावे को नष्ट कर दिया था जिससे शैतान के पास स्वर्ग में एक जगह हो सकती थी, और एक पराजित शैतान ने हमेशा हमारी दुनिया के लिए अपना दावा खो दिया। शैतान के साथ मसीह कलीसिया में संघर्ष। यीशु स्वर्ग में जाने से पहले उन्होंने मसीह कलीसिया की स्थापना की। महिला द्वारा प्रतीक। सूली पर उनकी मृत्यु ने मसीह कलीसिया को शैतान को हराने की शक्ति दी। आइए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 12:11, इसमें लिखा है, वे मसीह कलीसिया मेमने के खून और अपनी गवाही के कारण शैतान पर विजयी हुए। उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सहली। मसीह अब अपनी शक्ति, अपनी जीत का फल अपने चर्च को देने में सक्षम है। यीशु ने सूली पर शैतान पर निर्णायक रूप से विजय प्राप्त की और अब वे अपने चर्च के माध्यम से शैतान पर विजय प्राप्त कर रहे हैं। ईस्वी सन की गुजरने वाली सदियों के दौरान तीन विशेषताओं ने विजय चर्च का रेखांकन किया है। पहला, उन्होंने मेमने के खून के द्वारा शैतान पर विजय प्राप्त की। यीशु को परमेश्वर के सिंहासन तक ले जाया गया था ताकि वह अपने अनुयायियों के जीवन में अपना खून प्रभावी कर सकें। दूसरा, उन्होंने मृत्यु से हटने के लिए अपने जीवन को इतना प्रेम नहीं किया। मेमने के रक्त ने उन्हें मसीह के कार्य के लिए मरने को तैयार किया। उन्होंने मृत्यु से हटना नहीं चाहा। तीसरा, उन्होंने अपनी गवाही के वचन से शैतान पर विजय प्राप्त की। यीशु की शक्ति और उनके मसीह सुसमाचार के साक्षी शब्द नहीं हैं, बल्कि उनकी गवाही का शब्द, उनके जीवन की गवाही, उनके जीवित गवाही हैं। प्रकाशित वाक्य 12:11 विजय प्राप्त करने वाले एक विजयी कलीसिया को चित्रित करता है, जिनमें प्रचारक, शहीद, सुधारक और अन्य निष्ठावान मसीह शामिल हैं। उनकी दयालुता, विश्वास, साहस और जीत ने सदियों गर्जना की है और दुनिया चलाई है, क्योंकि शैतान धरती पर रहते समय यीशु को नष्ट करने में असफल रहा। इसलिए अब वह मसीह को नष्ट करना चाहता है जो अपनी कलीसिया में रहते हैं। आइए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 12:13-16 में, जब अजगर ने देखा कि उसे धरती पर फेंक दिया गया है तो उसने उस महिला का पीछा किया जिसने नर बच्चे को जन्म दिया था। महिला को एक बड़ी चील के दो पंख दिए गए थे ताकि वह रेगिस्तान में उसके लिए तैयार जगह पर जा सके, जहां वह सांप की पहुंच से बाहर हो और उसका उस समय तक ख्याल रखा जा सके। तब उसके मुंह से सांप ने महिला से आगे निकलने और उसे धार के साथ दूर बहाने के लिए एक नदी की तरह पानी निकाला, परंतु धरती ने स्त्री को अपना मुंह खोलकर अजगर द्वारा अपने मुंह से निकाली गई नदी को निगलने में मदद की। जैसा कि भविष्यवाणी की गई थी, ईस्वी सन के अंधेरे युग के दौरान शैतान ने चर्च को धार के साथ बहाने के लिए उत्पीड़न की एक नदी भेजी थी। ईस्वी सन के सबसे विषम समय के दौरान विश्वासियों की एक सेना कलीसिया के शुरुआती पादरियों से प्रोटेस्टेंट सुधारकों तक ने अपने जीवन की गतिशील गवाही के द्वारा इस धारणा पर विजय पाई कि शैतान उन पर हमला कर सकता है। प्रकाशित वाक्य 12:11 विजय प्राप्त करने वाले एक विजयी कलीसिया को चित्रित करता है, जिसमें प्रचारक, शहीद, सुधारक और अन्य निष्ठावान मसीह शामिल हैं। उनकी दयालुता, विश्वास, साहस और जीत ने सदियों गर्जना की है और दुनिया चलाई है। इस मध्य युगीन उत्पीड़न के दौरान सच्ची कलीसिया धर्म त्यागी नेतृत्व से निकल गए और रेगिस्तान में परमेश्वर के लिए तैयार की गई जगह पर शरण ली, जहां उसका 1260 दिनों तक ख्याल रखा जा सकता है। पद 6 या भविष्यवाणी एडी 538 से 1798 तक उत्पीड़न के 1260 वर्षों के दौरान पूरी हुई थी। एक दिन अक्सर प्रतीकात्मक बाइबल भविष्यवाणी में एक वर्ष तक माना जाता है। इसे एजिकियल 4:6 में हम देख सकते हैं और गिनती 14:34 में भी देख सकते हैं। इन अंधेरी सदियों के दौरान निष्ठावान बाइबल में विश्वास करने वाले ईसाइयों को हर उस स्थान पर शरण मिली जहां वे उनके लिए रहना संभव था। उदाहरण के लिए पश्चिमी इटली और पूर्वी फ्रांस के वाल्डेंसियन घाटियों में और ब्रिटिश द्वीपों के सेल्टिक चर्च में। हमारे दिन में परमेश्वर की कलीसिया, यह हमें हमारे दिन में 1798 के मसीह के सच्चे चर्च में लाता है, जैसा कि उम्मीद की जा सकती है। अजगर अभी भी परमेश्वर के लोगों से नाराज है। महान अदृश्य युद्ध जारी है। असल में शैतान यीशु के आने से पहले चर्च पर अपना सबसे बड़ा हमला करता है। हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 12:17 में, तब अजगर महिला पर गुस्सा हो गया था और वह उसकी बाकी संतानों के खिलाफ युद्ध करने के लिए चला गया जो परमेश्वर के आदेशों या नियमों का पालन करते हैं और यीशु की गवाही देते हैं। अजगर शैतान को बोध करता है और महिला परमेश्वर की कलीसिया का प्रतीक है। यह आगम हमारे दिन पर केंद्रित है। शैतान गुस्से में है, वह महिला की बाकी बची हुई संतान परमेश्वर के आज के दिन वाले लोगों के साथ युद्ध करता है। उनके पहचान चिन्हों पर ध्यान दे। पहला, ये अंत के दिनों के मसीह समर्थक यीशु की गवाही देते हैं। दूसरा, ये अंत के दिनों के मसीह लोग भविष्यवाणी किए लोग हैं। यीशु मसीह की गवाही प्राप्त करने के कारण यूहन्ना प्रकाशित वाक्य की किताब लिखने में सक्षम बने, प्रकाशित वाक्य 1:1-3। तीसरा, इन अंत के दिनों के मसीहों को भी परमेश्वर के आदेशों का पालन करने वाले के रूप में पहचाना जाता है। वे न केवल 10 आदेशों का अखंडता की रक्षा करते हैं बल्कि वे उनका पालन भी करते हैं। उनके दिल में परमेश्वर का प्रेम आनंददायक आज्ञाकारिता पैदा करता है। रोमियो 5:5 और 13:8-10। ये अंत के दिनों के मसीह परमेश्वर के आदेशों का पालन करने में मसीह और प्रारंभिक चर्च के उदाहरण का पालन करते हैं। यह अजगर शैतान को बहुत उकसाता है और वह महिला की बची हुई संतान के साथ युद्ध करता है, क्योंकि वह परमेश्वर के लिए उस प्रेम के साक्षी हैं जो आज्ञाकारी तैयार करता है। जैसा कि यीशु ने कहा, अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मैं जो आज्ञा देता हूँ उसका पालन करोगे, यूहन्ना 14:15। इन अंत के दिनों के मसीहों के जीवन से पता चलता है कि हमारे पूरे हृदय और हमारे जैसे साथी मनुष्यों के साथ परमेश्वर से प्रेम करना संभव है। यीशु के अनुसार ये गुण परमेश्वर के लिए प्रेम और लोगों के लिए प्रेम परमेश्वर के 10 आदेशों को जोड़ते हैं, मत्ती 22:35-40। उन आदेशों में से चौथा आदेश हमें शनिवार सप्ताह के 7वें दिन विश्राम के दिन के रूप में मानने के लिए कहती है, क्योंकि यीशु के लिए प्रेम ने उनके दिलों में सभी 10 आदेशों को भर दिया है। इसलिए अंत के दिनों के मसीही सब्बत का दिन मनाने वाले हैं। विश्राम का दिन प्रकाशित वाक्य में उनके लोगों को परमेश्वर के हृदय के अंतिम संदेश में से हैं। अध्याय 12:14-6-15 स्वर्ग के सभी संसाधन इन अध्यायों में वर्णित अंत के दिनों के मसीहों के पीछे हैं। एक जीवित उद्धारक उनका सनातन साथी है और पवित्र आत्मा आंतरिक मनुष्य में शक्ति के साथ उन्हें मजबूत करने के लिए काम करता है। वादा निश्चित है, वे मेमने के रक्त से और उनकी गवाही के वचन से शैतान को पराजित करेंगे, प्रकाशित वाक्य 12:11। क्या आप इन अंत के दिनों के मसीहों में से एक बनना चाहते हैं जो परमेश्वर के आदेशों का पालन करते हैं और यीशु की गवाही को मानते हैं? अभी आपका निर्णय लेने का समय है, अभी आप निर्णय ले सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दें। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे महान सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर पिता, तो हम सबों को आशीष दे। तेरे वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने हम लोगों को बुलाया है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें रास्ता दिखाया है। हम यीशु मसीह को चुने, उसके आज्ञाओं को माने और सच्चे तेरे लोगों के संग मिल जाए। इसके लिए मेरे हर एक श्रोताओं को मदद कर, हमें तेरा बुद्धि दे, हमें तेरा पवित्र आत्मा के द्वारा चला पिता, हमें आशीषित कर। इस विनती को हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, क्या करके सुना ग्रहण कर, आमीन।
खुदा है कहाँ तू मुझको ये तो बता।
साथ ही हम लगभग अपने प्रसारण के समाप्ति पर आ गए हैं। परमेश्वर के वचन को अधिक जानने के लिए आप हमेशा हमें 1800833221 पर संपर्क करें या हमें bible@awr.org पर ईमेल करें।
हमारा डाक पता है AWR Adventist World Radio, पोस्ट बॉक्स 1446, पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल भी कर सकते हैं hindisamc@sudadvent.org।
मैं हूं गौरव चौहान
और मैं हूं सारा मंडोरा। AWR की ओर से विदा लेते हैं।
अपने परिवार और दोस्तों के साथ फिर से हमसे जुड़ें।
तब तक हम आपको अलविदा और ईश्वर के आशीर्वाद की कामना करते हैं।